Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Chidambaranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhagavan Shankaracharya Dwara Virachit Yadi Pritchakam Arambhya Dosha.
वेदान्तवाक्येषु सदारमन्तो भिक्षान्मात्रेण चतुष्टिमन्त वेदान्तवाक्येषु रमन्तो विक्षान्मात्रेण अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कौपीनवन्तः अनुभाग मूलं तरो केवलमाश्रयन्तः पाणे त्वये स्त्रीनिव उत्सयन्त कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्त कन्थापि स्त्रीनिव उत्सयन्त कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्त वेदांत वाक्येषु सदारमन्तो विक्षान्त मात्रेण चतुष्टिमन्त। आप भी सुन सुन के तंग हो गए होंगे, वही रोज रोज वही। वेदांत वाक्य में रमण करिए, प्रारब्ध के अनुसार संतुष्ट रहिए, शोक मत करिए, करना है तो करुणा करिए। कौपीन बनता है, दूसरों के लिए व्यवहार करिए। ऐसा करते हैं अगर आप, तो निश्चित ही भाग्यशाली है। मूलम तरोह केवलम आश्रयंत, अर्थ इतना ही है कि वृक्ष की जड़ में रहते हैं, लेकिन भाव व्यापक है। अर्थ इतना ही है, मूलम तरोह केवलम आश्रयंत, कि वृक्ष की जड़ का आश्रय लेकर जो जीवन यापन करते हैं, लेकिन भाव व्यापक है। और भाव यही है कि दूसरों के निमित्त करते हुए व्यवहार में कैसे भी रहना पड़े तो मस्ती के साथ रहो। भाव यह भी है कि जैसे वृक्ष की जड़ में रहो तो उसमें अपनत्व तो नहीं पैदा होता, तो आप कहीं भी रहो चिपक करके मत रहो, कि पेड़ के नीचे रहने वाला व्यक्ति पेड़ में मार्क नहीं लगाता कि ये मेरा है, यही है ना, कि वृक्ष के नीचे रहने वाला साधक के संत के सिद्ध के महात्मा वहां अपने नाम का नेम प्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो तो नहीं लगाता कि ये मेरा एड्रेस है। इसका अर्थ इतना ही है कि वो वृक्ष की जड़ से चिपका नहीं है। और जरा सोचो, थोड़ा सा सोचो कि कोई अगर पेड़ की जड़ के नीचे रहने वाला भी या पेड़ की जड़ का आश्रय लेकर के रहने वाला व्यक्ति भी पेड़ पर भी नेम प्लेट लगा दे तो उसके रहने में और हमारे घर के रहने में क्या फर्क है, कोई अंतर है? और नेम प्लेट लगाने का अर्थ सिर्फ इतना है कि अगर उसने उस पेड़ से आसक्ति कर ली कि वो चिपक गया, मेरी बात ध्यान से समझना, कि पेड़ के नीचे रहने वाला व्यक्ति अगर पेड़ से चिपक गया तो उसमें और संसारी में कोई फर्क नहीं, सही है, मैं सही कह रहा हूं, है ना? पेड़ के नीचे रहने वाला व्यक्ति अगर पेड़ से भी चिपक गया तो संसारी और उस व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है, ये सही है। ऐसे ही घर में रहने वाला व्यक्ति भी अगर घर से नहीं चिपका है तो उस संत में और इस घर में रहने वाले व्यक्ति में कोई फर्क नहीं। और समझना इतना ही है, मूलम तरोह केवल माश्रयंता कहने का तात्पर्य इतना ही है। आदेश ये नहीं है कि आप पेड़ के नीचे रहो, क्योंकि आचार्य जिन्होंने ये लिखा वो खुद पेड़ में नहीं, पेड़ के नीचे नहीं रहे, है ना, तो बढ़िया मठ बना के रहे। आदेश ये नहीं है कि आप छत के नीचे मत रहो, हमने गलत व्याख्याएं की। आदेश ये नहीं है कि आप घरों में मत रहो, नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। और मुझे बताइए कि घरों में आपके जो कमरे बनते हैं उनमें जो सामान लगता है, क्या आश्रम में जो कमरे बनते हैं उनमें सामान कुछ अलग लगता है? वही वही ईंट है, वही सीमेंट है, वही क्या बोलते हैं रेत है, वही लोहा है, सब वही। तात्पर्य इतना ही है कि धर्मशाला में आप जाते हो कि होटल में जाते हो, वे भी उसी ईंट, उसी सीमेंट, उसी रेत के बने होते हैं, लेकिन आप उनमें चिपकते नहीं हैं। जाते हैं आप, रात भर रहते हैं, रहने को 3 दिन भी रहना पड़े, 7 दिन भी रहना पड़े, 15 दिन भी रहना पड़े तो रहते हो, लेकिन जब छोड़ने की बारी आती है तो आप रोते नहीं हो। कि छोड़ने की बारी आती है तो आपके मन में यह नहीं आता कि 15 दिन इसमें रहे अब छोड़ने का मन नहीं, कभी आता है? कभी नहीं। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 दिन नहीं, महीना भर भी रहो तो भी आपको घर आने की जो खुशी होती है वो अधिक होती है, कमरा छोड़ने के दुख की तो बात ही याद नहीं आती कि कब मौका मिले यहां से निकले और घर जाए। रहे आप उसमें भी अपना मान करके ही रहे, ये भी मजे की बात है, आपने दूसरों को पता भी बताया कि मैं अमुक होटल में हूं, मेरा कमरा वो है, ये भी कहा कि मेरा कमरा वो है, उस नंबर का मेरा कमरा है, मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, किसी से पूछिएगा बताएगा, ये भी कहा है ना? लेकिन जब छोड़ते हैं तो आपके मन में जरा सा भी कष्ट नहीं होता, कमाल की बात है। अपनापन आपने जताया, उसे अपना माना, पूरी तरह से माना, पूरी तरह से माना, जरा भी कहीं कमी नहीं थी, अपना मानने में थी, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब छोड़ने की बारी आई, सहज रूप से छोड़ दिया। उसको आप होटल के कमरे को छोड़ने के लिए आपको प्रेमपुरी में आने की जरूरत नहीं पड़ी कि पहले सिखाओ कि कैसे छूटे, कि वेदांत सुनने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप बताइए कि वो छूट नहीं रहा है, बड़ी आसक्ति हो गई है, कि पैसा तो मैंने दिया था लेकिन आसक्ति हो गई है, बड़ा सुंदर कमरा था, कभी किसी को सत्संग सुनने की जरूरत पड़ी होटल के कमरे को छोड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं, बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं हम। और शायद हम बोल रहे हैं इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, आपको तो इतना भी नहीं याद आता होगा कि हम कमरा छोड़ भी रहे, सोच भी नहीं आता होगा, तुरंत छोड़ देते हैं। समझाना यही है कि आप रहो कहीं भी, अपना मान के ही रहो, कोई फर्क नहीं है, अपना मान के ही रहो। पहचान कुछ होनी चाहिए कि शरीर की पहचान के लिए नाम रख दिया तो घर की पहचान के लिए घर का नंबर रख दिया, ठीक है चलेगा, ये मेरा है ये भी चलेगा। लेकिन जब छोड़ने की बारी आए तो वैसा ही होना चाहिए जैसा कि आप होटल के कमरे को छोड़ देते हो, कि धर्मशाला के कमरे को छोड़ देते हो। और आप आश्चर्य करेंगे कि अगर संसार में सबसे बड़ा दुख है तो यही है। एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे महाराज आदमी सबसे ज्यादा किससे डरता है? मैंने कहा कि तुम्ही को मालूम होगा, हम लोग तो मजे की चर्चा करते हैं, आनंद की चर्चा करते हैं, डर की चर्चा ही नहीं करते। तो महाराज मौत से डरता है, सबसे ज्यादा डर आदमी को मृत्यु से लगता है। तो मैंने कहा मौत को देखा है तुमने? कहते नहीं। मैं अजीब आदमी हूं जिसको देखा नहीं उससे डर रहे हो? और मैंने कहा कि मौत से डरने का सवाल दुनिया में फैला है, लोग कहते हैं मौत से सब डरते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहूं और सच बात कहूं कि आदमी को मौत से डर नहीं लगता, मरने से डर नहीं लगता, मृत्यु से भय नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे क्योंकि जिसे देखा ही नहीं उससे क्या डरेगा, जिसके बारे में जानता ही नहीं। एक सज्जन से मैंने पूछा, हमने कहा मौत से डरते हो? बोले हां। क्यों? कहते बड़ा कष्ट होता है। हमने कहा आपको पिछले जन्म का याद है कि बड़ा कष्ट होता है? ये सब सुनी सुनाई बातें कि किसी ने बोल दिया कि बड़ा कष्ट होता है तो हमने कह दिया, लेकिन जरा आप बताओ आप में से कितने लोगों को मौत के कष्ट से डर लगता है? बोलो जरा, एक को भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कि कैसा कष्ट होता होगा। ये तो कहने की बात है कि हमने बोल दिया कि मौत इसलिए डर लगता है क्योंकि बड़ा कष्ट होता है मरते समय। नहीं, गलत बात। और जितना मौत के समय कष्ट होता होगा ना उससे ज्यादा तो हम रोज झेलते हैं। मौत से नहीं डरता। तो आदमी डरता है कि यह सब छूट जाएगा। इतना जो बनाया वो छूट जाएगा। कि छोटा बच्चा मर जाए उसे डर नहीं लगता क्योंकि उसे सब कुछ छूटने का कोई ज्यादा डर नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन आप जितना संसार में गुजारते हो समय, जितना भी टाइम गुजारते हो, जितना ज्यादा गुजारते हो उतना ही वो डर और बढ़ता जाता है। कमाल की बात यह है कि जितने वृद्ध होते जाएंगे वो डर और बढ़ता जाता है। हमको लगता है कि ये तो पूरा जीवन जी चुके, अब जी के क्या करेंगे? और वो भी जानते हैं कि जी के क्या करेंगे, लेकिन फिर भी छूटने का डर है कि ये सब इतनी प्यारी दुनिया जिसको हमने बनाया। अच्छा, बनाने वाला परमात्मा, लेकिन हम मान लेते हैं हमने बनाया, ये हमारा घर, ये हमारा परिवार, ये हमारा ये, हमारा ये सब छूट जाएगा। यही तो डर है। मरने का किसे डर है? बोलो, किसी को नहीं। यह ना छूट जाए। और अगर मेरा निवेदन सुनना कि परमात्मा की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था हो कि मृत्यु के समय सब लेके जा सकते हो साथ में, तो कोई ना डरे। तो हम कल ही भगवान से कहते हैं कि कल ही आ जाओ और लेके चलो कि ये सब बना रहे। और कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि मरने के बाद में कहां जाना है वो भी अगर भगवान दिखा दें तो भी हम तैयार हो जाएं कि ये तो छोड़ना ही है, कि दूसरी दुनिया पता चले कि जहां जा रहे हैं वो कैसी जगह है, मालूम पड़े। ये आदमी बड़ा विचित्र है कि मृत्यु के बाद में आने वाली जगह अगर मालूम पड़ जाए तो भी मरने से नहीं डरे। आदमी तो यही है जो चंद्रमा पर भी रहने की सोच ले रहा है, क्योंकि ये सब रहेगा, क्योंकि ये सुविधाएं रहेंगी, क्योंकि ये मकान रहेगा, क्योंकि ये संसार रहेगा। बात तो यही है, पहले आदमी गांव से शहर जाने में भी डरता था कि पता नहीं ये न छूट जाए, कि बद्रीनाथ जाने में भी डरता था कि कहीं ये न छूट जाए, कि तीर्थ करने में भी डरता था कि कहीं ये न छूट जाए। लेकिन अब जब मालूम पड़ गया कि कुछ नहीं होता है, ठीक है, जीवन है, वहां भी सब सुविधाएं हैं, सब जगह जा रहा है, तो पहले अमेरिका जाने से भी डरते थे लोग, अब तो भूलता डर मृत्यु का नहीं, भूलता डर संसार के छूटने का है। ये हमारा, ये दुनिया हमारी न छूट जाए, सुविधाएं हमारी न छूट जाएं, सुख हमारे न छूट जाएं। कौन से सुख जो रोज रुलाते हैं, वो चिपक गए हैं। मूलंतरो केवलम आश्रयंतः, कहने का अर्थ सिर्फ, भाव सिर्फ यही है कि कहीं भी रहो चिपको मत, कहीं भी रहो पेड़ की जड़ की तरह रहो, कहीं भी रहो पेड़ की जड़ के आश्रय की तरह रहो, कि सिर्फ गुजारा करने के लिए कोई जगह चाहिए, हो गया। और ऐसी मानसिक वृत्ति, ऐसी मनोधारणा, ऐसा मनोभाव, ऐसा संकल्प, ऐसा निश्चय किसी साधक के अंदर में हो जाए, फिर देखो जीवन, यही जीवन, यही जीवन जिसको रोते रोते हमने ढोया, वही जीवन अगर मस्ती के साथ में नजर गुजरे तो कहना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ये कहीं भी रहो क्या फर्क पड़ता है। मुझे बताइए, आप क्या पेड़ के नीचे रहने वालों को नींद नहीं आती? बोलो, सोते नहीं है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमसे ज्यादा बेहतर सोते कि हमें बिस्तर पर भी शायद नींद ना आए, कि सोने के लिए भी गोलियां खानी पड़े। आपने कभी सुना है कि पेड़ के नीचे सोने वाले या फुटपाथ पर सोने वालों को कभी नींद की टेबलेट लेनी पड़ी? कभी नहीं। कि शोर भी हो रहा है, कि गाड़ियां भी निकल रही हैं, कि बड़ा डिस्टर्बेंस, मच्छर भी होंगे न जाने कितने, भी काटने वाले भी होंगे, हर तरफ से परेशानी है, फिर भी सो रहा है, मस्ती है। तो नींद उसे भी आती है, हम भी कमरे में सोने के लिए ही आते हैं, सोने के बाद में हमारा कमरा नहीं रहता, उसका पेड़ नहीं रहता, सोने के बाद में सिर्फ और सिर्फ हम रहते हैं। क्यों नहीं हम इस बात को समझते? मैं इस बात का विरोध कभी नहीं करता कि आप कमरों को छोड़िए, बिल्कुल नहीं, लेकिन कमरे को पेड़ बना लीजिए, ये मैं चाहता हूं। पेड़ को कमरा मत बनाइए, पेड़ को कमरा बनाया तो भारी है, लेकिन कमरे को पेड़ बना लिया तो साधना है, यही साधक, यही जीवन है। जहां रह रहे हो उसी को वृक्ष बना लो। लोगों को कठिन लगता था इसलिए छोड़ के जाते थे, लेकिन अब तो वो भी ऑप्शन नहीं है, जाने का भी कहीं ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं है, क्योंकि जहां जाओगे वहां इससे ज्यादा बड़े कमरे, वहां ज्यादा माया लगेगी, वहां ज्यादा चिपकाव है, वहां ज्यादा समस्या है। पहले तो वन थे, अब वन खत्म हो गए। पहले कहते थे चौथे पन जाइए नृप कानन, चौथी अवस्था में राजा को वन में जाना चाहिए, वन ही नहीं है, कहां जाओगे? समय बदल गया, अब कहना चाहिए चौथे पन जाइए प्रेमपुरी आश्रम, वो भी सिर्फ सुनने के लिए, निश्चय बनाने के लिए, बार बार याद रखने के लिए। कल स्वामी जी कह रहे थे, बढ़िया बात लगी हमको, गोविंद देवगिरी जी महाभारत, अच्छा लगा, कि अच्छे विचारों को बार बार सुनना चाहिए, क्यों? उनमें नवीनता बनी रहती है, वो याद बने रहते हैं। अच्छे विचारों को बार बार सुनना भी चाहिए, बार बार कहना भी चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन है ना, आप प्रवचन सुनते हो? नहीं नहीं, प्रवचन करना भी चाहिए। मुझे मालूम है आप कहोगे कि स्वामी जी आपको पता नहीं है, हम लोग बहुत प्रवचन करते हैं। प्रवचन कहने का अर्थ है कि जब भी किसी के पास बैठो अच्छी बात करो, जो सुना है वही कहो, पढ़ो भी वही, सोचो भी वही, सुनो भी वही, कहो भी वही, बोलो भी वही और जियो भी वही। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सुनोगे भी वही, पढ़ोगे भी वही, बोलोगे भी वही, तो कभी न कभी जीने भी वही लगोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर आपने वही सुना, वही बोला, वही कहा, तो करने भी वही लगोगे। पुण्यानंद जी महाराज को आप जानते हैं, भागवत किया था, निरंजन पीठाधीश्वर वर्तमान में, बढ़िया बात करते हैं। कहते हैं कि कोई आपसे पूछे कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा बोलो, आप बोलो। अगर कोई आपसे पूछे कि सुबह कितने बजे उठते हो, तो क्या बोलोगे? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, है ना? नहीं, आप लोग तो 8 बजे सवाल ही नहीं, 7:30 तो यहां आ जाते हो। तो कहते कोई आपसे पूछे कितने बजे जागते हो, तो आप बोलो 4 बजे जागते हैं, 3 बजे जागते हैं। कोई पूछे आप पूजा करते हो, अगर नहीं करते हो तो भी बोलो हां करते हैं। मैं साथ में था, दिल्ली की घटना, तो मैंने महाराज जी से पूछा, उन्होंने कहा ये झूठ नहीं होगा कि आप पूजा नहीं करते हैं फिर भी बोलो कि हां करते हैं, तो बढ़िया बात कही। बोले झूठ तो होगा लेकिन चलेगा। मैंने कहा क्यों चलेगा? तो कहने लगे कि देखो इसलिए चलेगा क्योंकि तुम झूठ बोलोगे तो सामने वाला को लगेगा ये पूजा करते हैं तो हम भी चलो शुरू कर देते हैं, तो तुम्हारे झूठ बोलने से सामने वाला भी पूजा शुरू कर देगा, इसलिए तुम्हारे झूठ से सामने वाले की तो जिंदगी बन रही है, तुम्हारी बर्बाद हो रही हो, सामने वाले की तो बन रही। मुझे तो आइडिया बढ़िया लगा भाई, ये तो अच्छी बात है।